का था, रूह वही रूप नया।
अगली कहानी आप सुनने जा रहे हैं चुड़ैल, और इसके लेखक हैं गी द मोपासा। मैं सुंदर जल मुहाने का खड़ा होकर आनंद उठा रहा था। यही वो जगह है जहां धनवान लोग चहलकदमी करने के लिए शाम को आया करते हैं। एकाएक मुझे वो कहानी स्मरण हो आई जो एक खौफनाक औरत से ताल्लुक रखती थी। वो औरत कभी सुंदर, चपल और जहीन थी, जिसे पेरिस में सब जानते थे, सब पसंद करते थे। वैसे तो ये कहानी वर्षों पुरानी हो चुकी है, किंतु ऐसी घटनाएं भूलने का प्रयास करने के बाद भी वो भुलाई नहीं जा सकती। एक मित्र ने मुझे उसके साथ रहने और उसके गांव में छुट्टियां बिताने के लिए बुलाया था। गांव के मेहमान के रूप में वो मुझे गांव के प्रत्येक भाग में घुमाने ले गया। गांव के एक से बढ़कर एक सुहावने दृश्य उसने मुझे दिखलाए। वृहद और भव्य रिहायशी घर, चर्चेस, सुंदर नक्काशी वाले पुराने पुराने दरवाजे, विशिष्ट रूप से विशाल काय, असामान्य आकार के वृक्ष, सेंट एंड्रयूज का ओक और रॉकवॉर्ड्स आदि के विशिष्ट वृक्ष थे। मैंने पूरे उत्साह और उमंग के साथ शहर के तमाम आकर्षणों का मुआयना कर लिया, और मेरे मित्र ने भी पूरे यकीन के साथ इसको कबूल भी किया। लेकिन अचानक उसने विस्मय से कहा, इसके बाद भी यहां देखने योग्य एक अद्भुत चीज रह गई है। यहां राक्षसों की मां चुड़ैल रहती है। मैंने हैरानी से अविश्वास भरे स्वर में पूछा, चुड़ैल? उसने जवाब दिया, हां, एक भयानक स्त्री, पूरी शैतान, एक ऐसी नारी जो हर साल जानबूझकर अपाहिज, विकृत और भयानक, या यूं कहें कि राक्षसों को पैदा करती है और उन्हें सर्कस और प्रदर्शनी के मालिकों को बेच देती है। जो शख्स इस घृणित कारोबार में लगे हुए हैं ना, वो वक्त वक्त पर यहाँ आते हैं ये मालूम करने कि क्या उसके पास कोई नया तैयार किया हुआ अधूरा अपंग शिशु है। अगर उन्हें बच्चा पसंद आता है तो वो उसकी माँ को उसकी उचित कीमत देकर उसे साथ ले जाते हैं। अब तक ये नारी ऐसे 11 बच्चों को पैदा कर चुकी है, बेहद धनवान है। तुम सोच रहे होगे शायद मैं ठिठोली कर रहा हूं, तुम्हें उल्लू बना रहा हूं, लेकिन इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है मेरे दोस्त। मैं सिर्फ तुम्हें सच बता रहा हूं, एक कड़वा सच। चलो चलो उस औरत को देखने चलते हैं। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि किस तरह वो अपाहिज और भयानक बच्चों को पैदा करने वाली एक मशीन बन गई। वो मुझे गांव के बाहरी भाग में ले गया। वो सड़क के किनारे खूबसूरत मकान में रहती थी। वो मकान बेहद खूबसूरत था और करीने से सजाया गया था। बाग ताजे फूलों से भरा हुआ खुशबू फैला रहा था। किसी भी व्यक्ति को उसके मकान को देखकर ये धोखा हो सकता था कि ये किसी वकील का आवास होगा। एक सेवक हमें छोटे से अतिथि कक्ष में ले गया और कुछ देर बाद वो खौफनाक औरत सामने आई। वो तकरीबन 40 वर्ष की थी, लंबी, कठोर नयन नक्श की, लेकिन उसका शरीर काफी बलिष्ठ था, मक्कार और रईस सी दिखती थी। गांव की स्वस्थ महिलाओं की तरह ही वो नजर आ रही थी, किंतु नारी और पशु का सम्मिश्रण सी थी। वो गांव में अपने लिए पैदा किए हुए तिरस्कार से वाकिफ थी और उसने हमारे साथ उपेक्षा का व्यवहार किया। उसने पूछा, इन श्रीमान को यहां क्यों लाए हो? मेरे मित्र ने कहा, हम लोगों को बताया गया है कि आपका अभी का बच्चा सामान्य बच्चों की तरह है और किसी भी नजरिए से वो अपने पहले वाले भाइयों जैसा नहीं लगता। मैं इसकी तस्कीद करना चाहता हूं, क्या ये सच है? उसने क्रुद्ध दृष्टि से हमारी ओर देखा और जवाब दिया, ओह नहीं नहीं, वो औरों की तुलना में और ज्यादा कुरूप और बेढंगा है।
मेरे तो भाग्य ही फूटे हैं, मैं अभागिन हूं। ये सब बच्चे तमाम एक जैसे हैं, वे सब तमाम एक जैसे दिखते हैं, सच में बेहद क्रूर हैं।
ये सब कुछ सच में बेहद क्रूरता थी। किस तरह वो पूरी दुनिया में अकेली पड़ गई थी। एक औरत के प्रति इतना निष्ठुर कैसे कोई हो सकता है। वो अपनी दृष्टि नीचे रखे और एक भयभीत हिंसक पशु की भांति शीघ्रता से बोली। उसकी तीखी आवाज में कुछ नरमी आ गई थी। उसके मुंह से आंसुओं में भीगी आवाज सुनने का एक अनोखा लुत्फ आ रहा था मुझे।
हम आपके वर्तमान बच्चे देखना चाहेंगे, मेरे मित्र ने प्रार्थना की।
ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अचानक लज्जित हो गई हो। शायद मुझे धोखा हो गया था। कुछ पलों की खामोशी के पश्चात उसने तेज आवाज में कहा,
आपको इससे क्या लाभ होगा।
उसने अपना सर उठाया और कठोर और क्रुद्ध निगाह हम पर डाली।
आप हम लोगों को बच्चा क्यों नहीं दिखाना चाहती हैं? यहां अनेक अन्य लोग भी तो आते हैं जिनको आप बच्चा दिखाती हैं। आप जानती हैं कि मेरा आशय किन व्यक्तियों से है।
एकाएक वो शीघ्रता से खड़ी हो गई और अपने क्रोध को पूर्णतया आवाज में समाविष्ट करते हुए ऊंची आवाज में चीखी,
तो इस कारण आप लोग यहां आए हैं, महज मेरा मखौल उड़ाने, क्योंकि मेरे बच्चे जानवरों जैसे दिखते हैं?
नहीं
नहीं, आप उनको नहीं देख सकेंगे,
नहीं देख सकेंगे।
जाओ, निकल जाओ यहां से। मैं आप लोगों को अच्छी तरह जानती हूं, आप सबको भली प्रकार पहचानती हूं मैं। मुझे महज मूर्ख बनाते हैं आप।
उसी हिंसक वाणी के आदेश पर एक विक्षिप्त नजर आने वाला शख्स गुर्राता हुआ करीब के कक्ष से सामने आकर खड़ा हो गया।
मैं भीतरह कांप उठा।
क्रुद्ध स्वर में मेरे मित्र ने उस स्त्री को चेतावनी दी,
चुड़ैल राक्षसी, देखना देखना, एक दिन यही तुम्हारा सर्वनाश करेगा, तुम्हारे लिए दुर्भाग्य का कारण साबित होगा।
वो क्रोध और प्रतिशोध से जल उठी। अपने हाथ झटकती क्रोध से भरी हुई वो चीखी,
जाओ यहां से, तुम सब जंगली हो, जाओ।
वो एक तरह से हम लोगों पर झपट पड़ी। हम दौड़ पड़े, हमारा दिल भय के कारण बैठा जा रहा था। जब हम घर से बाहर निकल आए तो मेरे मित्र ने पूछा,
खैर तुम्हारी क्या राय है?
मैंने कहा, मुझे उस क्रूर स्त्री का पूरा इतिहास बताओ। और जब हम सफेद राजमार्ग पर आ गए, जिसके दोनों ओर पके हुए अनाज के खेत थे, जो ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके से आंदोलित सागर की भांति लहरा रहे थे, तब मेरे मित्र ने जो कुछ बताया वो इस प्रकार था।
बहुत पहले जब वो लड़की थी तब एक खेत में काम करती थी। वो एक बढ़िया मजदूर थी, बेहद परिश्रमी, उपयोगी, व्यवहार कुशल और सतर्क तबीयत की। किसी को भी नहीं पता था कि उसका कोई प्रेमी भी है, ना ही उसके चाल चलन पर किसी को संदेह था। कटाई के मौसम में जब सब लोग थक कर गिर जाते हैं, वो भी एक तूफानी रात में आकाश के नीचे धान के ढेर पर गिर पड़ी। तब गर्म हवाएं भट्टी की आग की तरह तप रही थी और युवक युवतियों के भरे पूरे जवान जिस्म पसीने से नहा रहे थे। जल्दी ही वो समझ गई कि वो मां बनने वाली है। बदनाम होने और सामाजिक लज्जा के भय से वो सिहर उठी। हर कीमत पर अपने इस पाप को छिपाने हेतु खुद के द्वारा निर्मित भोंथरे औजार से, जो उसने बांस की खपच्चियों और एक मोटी रस्सी से बनाया था, पूरी ताकत से अपना पेट दबाना आरंभ किया। जैसे जैसे बच्चा उसके गर्भ में बढ़ता गया, उसी अनुपात में वो एक नए औजार से पेट पर और ज्यादा दबाव डालने लगी। अपने इस असहनीय दर्द को बहादुरी से झेलते और मानसिक यातना को सहते हुए वो सदैव हंसती रही, खुश मिजाज रही और काम करती रही, ताकि उसे कोई भांप ना सके और ना ही उस पर किसी तरह का संदेह हो। उसने अपने गर्भस्थ भ्रूण को इस औजार के बीच दबाकर कुचल दिया, विकृत कर दिया, उसे हैवान बना दिया। बच्चे का सिर चपटा हो गया था और खिंचकर लंबा भी। उसकी दोनों आंखें माथे से बाहर निकल आई थी। हाथ जिस्म की तुलना में लंबे हो गए थे, हाथ पैर की उंगलियां मकड़ी के पांव की तरह पतली और मुड़ गई थी, और बच्चा सुपारी की तरह गोल और छोटा हो गया था। आखिरकार उसने खुले खेत में वसंत की एक सुबह एक अनूठे विकृत बच्चे को जन्म दिया। जब खेत पर बुवाई करने वाली उसकी संगी महिलाएं उसकी सहायता के लिए दौड़ी तो जन्म लेते उस खौफनाक बच्चे को देखकर मारे खौफ के भाग गईं, और करीबी इलाके में यह कहानी फैल गई कि उसने एक दैत्य मानव को जन्म दिया है। उसी वक्त से उसका नाम चुड़ैल हो गया। उसकी नौकरी जाती रही, वो दूसरों की कृपा और शायद गुप्त प्रेम के सहारे जिंदा रही, क्योंकि वो देखने में बेहद सुंदर थी, आकर्षक और युवा थी, और तमाम आदमी दोजख से भय नहीं खाते। उसने अपने इस विकृत और अप्राकृतिक बच्चे की परवरिश की, जिसे वो पूरी शिद्दत से नफरत करती थी। उस गांव से गुजरने वाली एक कार्निवल कंपनी ने एक दिन खौफनाक शिशु के जन्म की अनोखी कहानी सुनी और उस बच्चे को पसंद करने के लिए देखना चाहा। उन्होंने बच्चे को देखा, पसंद किया और तत्काल ही बच्चे की मां को बच्चे के मूल्य के रूप में नकद 500 मुद्राएं दी। शुरू में शर्मिंदगी के कारण वो नहीं चाहती थी कि वे लोग बच्चे को ऐसे देखें, लेकिन जब उसे लगा कि यह सौदा कमाई का जरिया है और वे लोग ऐसा बच्चा खरीदना चाहते हैं, तब उसने तोल मोल करना शुरू कर दिया। वो अपने बच्चों की विकृतियों के चटखारेदार किस्से सुनाकर उन लोगों को उकसाकर पैसे बढ़ाने लगी, और यह अनोखा व्यापार उसे रास आ गया। इस कारोबार में उसे कोई धोखा या क्षति न हो, इसके लिए उसने उन लोगों के साथ एक कानूनी अनुबंध कर लिया, जिसके अंतर्गत वे उसे हर साल 400 मुद्राएं नियमित तौर पर देंगे, साथ ही साथ उस बच्चे को अपने साथ सुरक्षित रखेंगे। दौलत, वैभव, सौभाग्य की उम्मीद से बेजार हुई सब कुछ पाने की लालसा ने उस मां को विक्षिप्त कर दिया था। उसके पश्चात उसने अजीबोगरीब, विकृत और डरावने बच्चों को जन्म देने की इच्छा को मरने नहीं दिया, ताकि उसे भी अन्य धनवानों की तरह मोटी रकम मिलती रहे। हालांकि वो बेहद समझदार थी, इसलिए अपनी महत्वाकांक्षा में वो विजयी रही। अपनी गर्भावस्था में विभिन्न दबावों से वो कई प्रकार के कुरूप आकारों के बच्चे पैदा करने में दक्ष होती चली गई। उसने लंबे, ठिगने, केकड़े और छिपकली के तरह के बच्चे पैदा किए। उनमें से कई मर भी गए, जिसके लिए उसे दुख भी हुआ। कानून ने उसे थामना चाहा, लेकिन कानून कुछ साबित ही नहीं कर पाया। अब तक उसके 11 बच्चे जिंदा हैं, जो हर साल उसके लिए 5 से 6 हजार मुद्राओं की वार्षिक आय पैदा करने का काम करते हैं। एक आखिरी बच्चा अभी तक बिका नहीं है, जिसे हम देखने गए थे, और उसने उसे दिखाने से मना भी तो कर दिया, लेकिन अब वो इस प्रक्रिया को ज्यादा वक्त तक जारी नहीं रख सकेगी, क्योंकि अब सभी सर्कस के मालिक उसे जानने लगे हैं। वे सभी समय समय पर उसके पास ये जानने के लिए आते हैं कि उसके पास बेचने के लिए कोई नया बच्चा है या नहीं। अगर उसका बच्चा इस योग्य होता है तो अनेक खरीदारों के बीच नीलामी भी करती है वो। मेरा मित्र खामोश हो गया। मेरे हृदय में अजीब वितृष्णा पैदा हुई, जिसमें एक भयानक आक्रोश और लाचारी थी। मुझे दुख हुआ कि जब वो मेरे हाथ आई तो मैंने उसका गला क्यों नहीं दबा दिया। लेकिन इन बच्चों का पिता कौन है, मैंने सवाल किया।
कोई नहीं जानता,
उसने जवाब दिया।
या तो वे लोग खामोश हैं, या फिर वे सब अवश्य ही अनजान हैं। शायद वे सब पिता भी इस पाप के बराबर के हिस्सेदार हैं।
मैंने कल तक इस विचित्र रोमांच के विषय में नहीं सोचा था। जब मैंने उस झील के किनारे एक खूबसूरत आकर्षक स्त्री को देखा, जिसमें त्रिया चरित्र के तमाम विशेषण कूट कूट कर भरे थे, वो अनेक लोगों से घिरी थी और सबकी निगाहों में उसके लिए बेहद सम्मान था।
मैं अपने डॉक्टर मित्र की बाहों में बाहें डाले ठीक उसके समक्ष जाकर खड़ा हो गया। 10 मिनट बाद मैंने देखा कि एक आया 3 बच्चों का खास ध्यान रख रही है, जो पास ही की रेत पर उछल कूद कर रहे हैं। बैसाखियों का एक जोड़ा जमीन पर मौजूद था। फिर मैंने देखा कि तीनों बच्चे कुरूप, बेढंगे, लंगड़े, कुबड़े और तिरस्कार के पात्र थे। डॉक्टर मित्र ने बताया कि तीनों बच्चे उस बला की सुंदर और आकर्षक युवती के हैं जिससे मैं अभी अभी मिला हूं। मुझे उस स्त्री और उसके तीनों बच्चों की अपंगता पर बहुत तरस आया। बेचारी अभागिन माँ, इतने पर भी वो कैसे हंस सकती है? मेरे मित्र ने कहा,
अरे इस नारी पर तरस मत खाओ, ये बच्चे जिन पर तुम्हें वाकई तरस आना चाहिए, ये आखिर तक अपने शरीर को आकर्षक बनाए रखने के दुष्परिणाम हैं। ये विकलांग और विकृत बच्चे इसी खूबसूरत नारी के बनाए हुए हैं, इसी के जन्मे हैं। वो बहुत भली प्रकार जानती है कि वो इस खतरनाक खेल में अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा चुकी है। जब तक वो आकर्षक, जवान और लुभावनी है, तब तक कोई इस बात की परवाह नहीं करने वाला, ना ही वो खुद।
मुझे उस गांव की चुड़ैल की याद हो आई जो ऐसे बच्चों को बेचा करती थी। आप सुन रहे थे कहानी चुड़ैल, और इसे लिखा था गी द मोपासा ने। गाथा के जरिए आपके सामने प्रस्तुत किया नैनी दीक्षित ने।